الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم معارف القرآن کی جلد نمبر 1 سے مقدمہ پڑھتے ہیں، جو کہ علوم القرآن پر مشتمل ہے، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ آپ نے شروع میں سنا ہوگا کہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم سے ان کے والد محترم حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو تفسیر معارف القرآن وہ تعریف کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو اس کا جو ہے نا ایک مقدمہ آپ لکھ دیجئے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو وہ بہت بڑا ہو گیا. انہوں نے بہت زیادہ تحقیق کر کے جو ہے وہ مقدمہ معارف القرآن لکھا، تو وہ چونکہ اتنا طویل ہو گیا تو اس کو جو ہے وہ پھر فیصلہ کیا کہ ایک باقاعدہ کتاب کی شکل کے اندر شائع کر دیا جائے. تو وہ کتاب علوم القرآن کے نام سے الگ سے موجود ہے، تو اس کا ایک خلاصہ وہ پھر مقدمہ معارف القرآن بنایا گیا، جو کہ ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں، اور درمیان درمیان میں ہم پھر علوم القرآن کی جو مستقل کتاب ہے اس میں سے بھی ریفر کرتے رہتے ہیں. تو اس میں جو موضوع آج کل چل رہا ہے وہ اس صفحے کے اوپر پیج نمبر 53، آپ کے سامنے جو شیئر ہے وہ پیج نمبر 54 ہے. تو وہ موضوع ہے تفسیر قرآن کے بارے میں ایک شدید غلط فہمی. ٹھیک ہے، غلط فہمی، فہم کہتے ہیں سمجھ کو، انڈرسٹینڈنگ کو. اور غلط فہمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلط انڈرسٹینڈنگ، غلط سمجھ. ٹھیک ہے، تو لفظ تو بڑے ہمارے یہاں بہت ہی کیجولی غلط فہمی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، او جی مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی بس. ٹھیک ہے، تو اس استعمال سے جو ہے نا وہ غلط فہمی کا ایک بہت ہی ہلکا پھلکا سا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، لیکن اگر اس لفظ کی حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے، بہت بھاری لفظ ہے. کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ نے جو اس کی حقیقت تھی، جو اس کے بارے میں سچی بات تھی، اس کو نہیں سمجھا بلکہ کچھ اور سمجھ لیا، کچھ اور سمجھ لیا. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے کچھ اور سمجھ لیا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ کی سوچ جو ہے وہ اسی کے اوپر تعمیر کرے گی، اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو، اور اسی کے اوپر پھر آپ کا عمل بھی دار و مدار اسی غلط سوچ کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، تو غلط سوچ، غلط فہمی یہ بہت ہی بھاری لفظ ہے، خصوصاً اگر یہ کسی بڑی بات کے بارے میں ہو، جیسے کہ اللہ کا کلام قرآن مجید. تو غلط فہمی کی اصلاح جو ہے وہ لازمی ہے، وہ شرط ہے، اگر انسان اپنا عمل صحیح کرنا چاہتا ہو. تو وہ اس وقت تک صحیح نہیں کر سکتا جب تک اپنے فہم کو صحیح نہ کر لے، اپنی سمجھ کو صحیح نہ کر لے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو صحیح نہ کر لے، اس وقت تک اس کا عمل صحیح نہیں ہو سکتا. اور عمل کے اوپر ہی ثواب ملتا ہے، غلط عمل کے اوپر سزا ملتی ہے، پٹائی ہوتی ہے، گناہ ملتا ہے غلط عمل کے اوپر. تو بنیاد کیا ہے؟ فہم، سمجھ. ٹھیک ہے، عمل کرے چلے جا رہے ہیں لیکن فہم غلط ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل بھی غلط ہی ہوگا. تو تفسیر قرآن کے بارے میں شدید غلط فہمی جو خصوصاً ہمارے دور کے اندر زیادہ لوگوں کو لگ گئی ہے، वो ये है कि जी ये तो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ताला जो है वो मेरा भी रब है जिस तरह किसी और का रब है, तो जिस तरह कोई और अल्लाह का कलाम समझ सकता है उसी तरीके से मैं भी अल्लाह का कलाम वैसे ही समझ सकता हूँ, मुझे भी मुकम्मल इख्तियार है, मेरा भी पूरा का पूरा हक बनता है कि अपने परवरदिगार, इतनी इसके अंदर जो है वो तौहीद झलकती है इस जुमले के अंदर, मेरा परवरदिगार मुझसे क्या कह रहा है तो मेरा भी हक बनता है कि मैं खुद ही इसको समझूं, ठीक है। लेकिन ये शैतान का धोखा है, क्योंकि बगैर इल्म के आप अल्लाह का कलाम समझेंगे तो फिर आपको शैतान भी तो अल्लाह ही ने बनाया है ना। शैतान क्या है, अल्लाह की मखलूक है या किसी और की, खुद अपनी मर्जी से बन गया शैतान, अल्लाह ही ने शैतान बनाया ना इस दुनिया में, शैतान को हमारे लिए आजमाइश अल्लाह ही ने बनाया ना, तो शैतान फिर उस रास्ते पे ले जाता है और फिर गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और उसके नतीजे में गलत इल्म का के मुर्तकिब हो जाते हैं और फिर उसके नतीजे में फिर सजा के मुस्तहिक हो जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स पीपल सिंपलीफाई थिंग्स बाय सेइंग दैट आवर इंटेंशंस आर करेक्ट सो वी वुड बी जज्ड ऑन नियत, आवर इंटेंशंस आर करेक्ट, दिस इज एन अजम्पशन, दिस इज एन अजम्पशन। और आपने सुना होगा ना, आप पहले भी शायद मैं बयान कर चुका हूँ, अभी रिसेंटली जुमे के मजलिस में भी बात हुई थी कि मेरे पहले मैनेजर ने जो मुझे बात कही थी वो अल्हम्दुलिल्लाह यानी इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के लिए वो अच्छी एक रेफरेंस के तौर पे काम आ जाती है, वरना तो हकीकत तो हमारे दीन में मौजूद है, इंग्लू की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन ये आजिस क्या रेफर करता है अपने मैनेजर को, कैसे कोट करता है पहले मैनेजर को के नहीं, अजम्पशंस नहीं, वो होता है ओपिनियंस आर लाइक बेली बटन्स, एवरीवन हैज ओपिनियंस का। और मेरे मैनेजर ने ये नहीं कहा था, मेरे मैनेजर ने कहा था व्हेन यू अज्यूम, व्हेन यू अज्यूम यू मेक ए खोता आउट ऑफ यू एंड मी, राइट, यू मेक एन एस आउट ऑफ यू एंड मी, एंड एस का मतलब हम शाइस्तगी के साथ खोता ले लेते हैं, कुछ और नहीं लेते, ठीक है। तो आप अपने और मुझे जो है ना वो खोता बनाते हैं खाली, व्हेन यू अज्यूम थिंग्स, ठीक है ना। तो मेनी थिंग्स आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस व्हिच आर एक्चुअली रॉन्ग। फॉर एग्जांपल, आप में से किसी ने साजिश से जो है वो सवाल किया किसी चीजों के बारे में, जी लोग जो है वो भी मेरे घर में जो है ना वो टॉक्सिक लोग रहते हैं, एवरी पीपल अराउंड मी आर टॉक्सिक पीपल, सो हाउ शुड आई डील विद टॉक्सिक पीपल, राइट। तो अब इसके ऊपर जो है ना वो हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल, हम यही आगे से कहते हैं भी सबर करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी सबर करते थे और जो है वो नबी अलैहिस्सलाम माफ कर दिया करते थे, हमें भी माफ कर देना चाहिए। लेकिन इट इज बेस्ड ऑन एन अजम्पशन कि मेरे चारों तरफ टॉक्सिक लोग रहते हैं, मुझे उनके साथ सबर का मामला करना चाहिए, मुझे उनको माफ कर देना चाहिए, दिस इज बेस्ड ऑन एन अजम्पशन। व्हाट इज दैट अजम्पशन, ये आप बता दें, व्हाट इज दैट अजम्पशन कि मेरे चारों तरफ टॉक्सिक लोग रहते हैं तो मुझे उनको माफ करना चाहिए, मुझे उनके ऊपर सबर करना चाहिए, व्हाट इज दैट अजम्पशन दैट इज बेस्ड ऑन, किस गुमान के ऊपर आप जो है वो लोगों को माफ करते फिर रहे हैं, राइट, ठीक है ना। दैट यू नो व्हाट टॉक्सिक मींस, राइट, टॉक्सिक की डेफिनेशन जो है वो आप खुद करेंगे, आपको मालूम है कि टॉक्सिसिटी क्या चीज होती है और कौन लोग जो है वो टॉक्सिक होते हैं, राइट। कहां से आपको ये मालूम है कि टॉक्सिक कौन लोग होते हैं, टॉक्सिक की डेफिनेशन क्या होती है, कहां से आपने ये बात सुनी, राइट, वेस्टर्न कल्चर से सुनी, ईस्टर्न कल्चर से सुनी, किसी वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल से सुनी, किसी नॉन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से सुनी, किसी किससे सुनी आपने ये, राइट, कि टॉक्सिक क्या होता है, टॉक्सिक क्या नहीं होता। हाउ डू यू डिफाइन टॉक्सिक एंड हाउ डू यू डिसाइड कि हु इज टॉक्सिक एंड हु इज नॉट टॉक्सिक, क्या आपका क्राइटेरिया है, क्या आपकी जो है वो स्टैंडर्ड है, क्या आपकी नॉलेज है, ठीक है। तो टॉक्सिक की डेफिनेशन की बुनियाद पर ये भी तो हो सकता है ना कि वो लोग जो आपके गिर्द रहते हैं वो टॉक्सिक नहीं है बल्कि आप खुद टॉक्सिक हैं, ये भी तो हो सकता है ना कि आप खुद टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक का मतलब होता है यानी तकलीफ पहुंचाने वाले लोग, अजियत पहुंचाने वाले लोग, हो सकता है आप खुद टॉक्सिक हैं, या हो सकता है वो भी टॉक्सिक है आप भी टॉक्सिक हैं, वो आपको तकलीफ पहुंचाते हैं आप उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन टॉक्सिक है, कौन टॉक्सिक है। आप एज्यूम करके बैठे हुए हैं कि जी दूसरे लोग टॉक्सिक हैं और आप टॉक्सिक नहीं हैं, ठीक है ना, इस वजह से आप सबर करें, आप लोगों को बर्दाश्त करें, माफ कर दें और अपनी जो है वो विलायत के दर्जात बुलंद करते रहें लोगों को माफ कर करके, करते वरते कोई नहीं है, बस ऐसे ही अपने गुमान के अंदर जो है वो लोगों को माफ करते रहते हैं। व्हाई दिस इज बिकॉज दिस इज ऑल बेस्ड ऑन अजम्पशन। तो इस वजह से आपने जो लिखा ना कि पीपल सिंप्लीफाई थिंग्स बाय सेइंग दैट आवर इंटेंशंस आर करेक्ट, दिस इज अ बिग अजम्पशन दैट योर इंटेंशंस आर करेक्ट। हमें तो अपनी इंटेंशंस को गेज करना भी नहीं आता कि हमारी इंटेंशन है क्या, हमारी नीयत है क्या, हम किस चीज के बारे में क्या इंटेंशन कर रहे हैं, हमें कख पता नहीं होता इन चीजों का। ऐसे ही बैठ करके जाना वो मेरी नीयत बड़ी अच्छी है ना, कहने को तो भाई मैं भी कह दूं मेरी नीयत बड़ी अच्छी है, मैं बस आपको थप्पड़ मार रहा हूँ, लेकिन बड़ी अच्छी नीयत के साथ मैं आपको थप्पड़ मार रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको जलील कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी नीयत है मेरी, आप हैं कि इस किस्म की इंसान के थप्पड़ मार के मुझे सवाब मिलेगा, मैं तो अच्छी हूँ, तो आप मैं तो सवाब का काम कर रहा हूँ आपको थप्पड़ मार करके, आपको जलील और रसवा करके, मेरी नीयत बड़ी अच्छी है, ठीक है ना, तो कहने का क्या है भी, मैं भी कह दूं इसका क्या। तो अजम्पशंस बहुत सारी, बल्कि बहुत सारी क्या, मोस्टली जो हमारी चीजें जो होती है ना वो गलत फहमी और गलत फहमी गलत गुमानी के ऊपर बेस्ड होती हैं, इसी वजह से फिर हम उल्टी सीधी हरकतें भी करते फिर रहे होते हैं। बहरहाल तो इसका हल जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांगना और सही इल्म हासिल करना जो कि सही सोर्सेस से मिलता है। बहरहाल तो वलकद यसरुल कुरान लिज़्ज़िक्र, कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि हमने इस कुरान मजीद को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है, फहल में मुद्दकर, तो कोई है जो कि इससे नसीहत हासिल करे। तो जब कुरान मजीद इतना आसान है तो फिर लंबे चौड़े उलूम व फनून की क्या जरूरत है। तो उसका जवाब मुफ्ती उस्मानी साहब ने दे दिया था और हमने उसको पिछली क्लास में पढ़ भी लिया था, और फिर उसके बाद हजरत ने ये भी बताया था, हमें याद दिलाया था, यू नो पॉइंटिंग आउट द ऑब्वियस, हजरत जी ने, हजरत मुफ्ती उस्मानी ने, ही जस्ट पॉइंटेड आउट द ऑब्वियस कि भाई जो सहाबाए कराम थे वो जब नबी अलैहिस्सलाम से पूछा करते थे कुरान मजीद की तफसीर सीखा करते थे, तो हम क्यों नहीं सीखते, हम क्यों बगैर सीखे जो है ना वो अपनी तरफ से बना लेते हैं, उनकी तो जुबान भी अरबी थी, वो तो उस माहौल में भी थे जहाँ पे कि कुरान मजीद नाजिल हो रहा था, उन्होंने चीज़ों का मुशाहिदा भी किया था, और हमने तो कुछ भी नहीं किया, ना हमें अरबी आती है। तो आगे हम पढ़ते हैं पेज नंबर 55 के ऊपर, हाँ ये हमने कॉल तो नहीं पढ़ा था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हाँ मसलन एक मिसाल थी ना पेज नंबर 54 के एंड पर, कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुम वगैरह, उन्होंने हमें बताया कि जब वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम की 10 आयतें सीखते थे तो उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ते थे जब तक इन आयतों के मुतअल्लिक़ तमाम इल्मी और अमली बातों का अहाता ना कर लें। वो फरमाते थे तअल्लमना अल-कुरान वल-इल्म वल-अमल जमीअन, ठीक है, हमने कुरान और इल्म व अमल साथ साथ सीखा है, साथ साथ सीखा है, ठीक है ना, यानी खाली थ्योरेटिकल और एकेडमिक नॉलेज जो है वो हमने पहले 10 साल हासिल करी, फिर उसके बाद जाकर के अमली मैदान में कदम रखा, फिर अमल करना शुरू किया, ऐसा नहीं है, दोनों काम साथ साथ चलते रहे साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो चुनाचे मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह में रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने सिर्फ सूरह बकरा याद करने में पूरे 8 साल सर्व किए, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो मुसनद अहमद में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम में से जो शख्स सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ लेता हमारी निगाहों में उसका मर्तबा बहुत बुलंद हो जाता। कुरान मजीद की दो सबसे बड़ी सूरतें जो पढ़ लेता तो ओहो इतना बड़ा इसका मुकाम हो गया कि जिसने दोनों सूरतें जो है वो पढ़ ली हैं, तो पढ़ ली हैं माशाल्लाह। हमारे यहाँ तो जो आशिक कुरान, अभी हमारे बेटे साहब भी किसी से सुन करके बता रहे थे, कारी साहब ने गालिबन उनको बताया कि रोजाना ये कुरान मजीद जो है वो पढ़ लेते हैं, और बेचारे साहब जो थे वो रोजाना, तो दूर की बात, वो 8-8 साल जो है वो एक सूरत पढ़े होते थे। बहरहाल हम ये नहीं कह रहे कि जो रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत कर लेते हैं तो वो गलत काम करते हैं, भाई वो तिलावत के शौकीन हैं, कुरान का उनको इश्क है, कुरान की आवाज़ से, कुरान को पढ़ने से उनको ताल्लुक़ है, वो रोज़ाना पढ़ें, बेशक दिन में 2 भी पढ़ें 3 भी पढ़ें, अगरचे के एक रिवायत तो ये है कि 3 दिन में कुरान मजीद ख़त्म करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, तो हम उनको कोई जज करने के हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और ना हम इस पोजीशन पर रहेंगे किसी रोज़ाना कुरान मजीद के पढ़ने वाले को नेगेटिवली जज करें, हम कौन होते हैं भाई। बहरहाल हम यहाँ पे एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इल्म के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। حضرت فرماتے ہیں کہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کی مادری زبان اردو تھی سوری عربی تھی، جو عربی کے شعر و ادب میں مہارت تامہ رکھتے تھے، کمپلیٹ مکمل مہارت رکھتے تھے، اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معموری توجہ سے ازبر ہو جایا کرتے تھے، یعنی پکے یاد ہو جاتے تھے، ذرا سی وہ توجہ کر کے پڑھ لیتے تھے نا، ان کو پکے یاد ہو جاتے تھے، انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کے معانی سمجھنے کے لیے اتنی طویل مدت کی کیا ضرورت تھی کہ 8 8 سال صرف ایک سورت پڑھنے میں خرچ ہو جائیں؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرآن کریم اور اس کے علوم کو سیکھنے کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت کافی نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عربی زبان کی مہارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود عالم قرآن بننے کے لیے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی، تو نزول قرآن کے سینکڑوں سال بعد عربی کی معمولی شدھ بدھ پیدا کر کے، معمولی شدھ بدھ پیدا کر کے یعنی جس بہت ہی سپرفیشل قسم کی نالج حاصل کر کے، یا صرف ترجمے دیکھ کر مفسر قرآن بننے کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم و دین کے ساتھ کیسا افسوسناک مذاق ہے! ایسے لوگوں کو جو اس جسارت کا یعنی ہمت کرتے ہیں اس طرح کی بات کہنے کی، اس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جو شخص قرآن مجید کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، بغیر علم، علم کے بغیر بات کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ واٹ علم؟ کمپیوٹر سائنس کا علم، کون سا علم؟ میڈیکل سائنس کا علم، کون سا علم؟ انجینئرنگ کا علم، وہ بھی تو علم کہلاتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ کہ آپ نے جو ہے وہ علم حاصل کیا، چلو کچھ حدیثوں کا علم حاصل کر لیا، کچھ جو ہے وہ ترجمے کا، آپ نے کچھ اور فقہ کا علم حاصل کر لیا، تو اب آپ قرآن کی تفسیر کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس علم ہے۔ نہیں، یہاں پہ جو لفظ علم ہے یہ اس خاص علم کی بات ہو رہی ہے جو کہ تفسیر قرآن کے لیے چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طریقے سے کامن سینس کی بات ہے کہ انجینئرنگ کا کوئی فیلڈ میں کسی انجینئرنگ کی بک کو سمجھنے کے لیے آپ کو میڈیکل سائنس کا علم اگر موجود ہو تو اس سے آپ انجینئرنگ کا بک کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے آپ کو انجینئرنگ کے علم کی ضرورت ہے نا، اور وہ بھی میکینیکل کا ہے تو میکینیکل کے علم کی، الیکٹریکل کا ہے تو الیکٹریکل کے علم کی ضرورت ہے۔ ایون انجینئرس کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف شعبے ہیں انجینئرنگ کے اندر بھی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے کوئی میڈیکل ڈاکٹر جو ہے وہ کہے جی میں نے تو بڑا علم حاصل کیا، اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہیں، اور میں تو انسان کی جو ہے وہ نفسیات کا بھی میں نے علم حاصل کر لیا، سائیکالوجی بھی پڑھ لی ہے، اب میں قرآن کریم کا جو ہے وہ تفسیر کر سکتا ہوں، تو بیوقوفی کی باتیں ہیں بس۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کہ من تکلم فی القرآن برأیہ فأصاب فقد أخطأ، کہ جو شخص قرآن مجید کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کرے اور اس میں کوئی صحیح بات بھی کہہ دے تب بھی اس نے غلطی کی، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے اپنی رائے سے گفتگو کری، اپنی رائے سے یہاں پر مطلب کیا ہے؟ لفظ رائے یہاں پر بمعنی خواہش ہے، اپنی خواہش، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مفہوم جو اس کا بنتا ہے نا، اس کی انشاءاللہ ہم تفصیل پڑھیں گے علوم القرآن والی کتاب سے، تو اس کا جو مفہوم بنتا ہے لفظ رائے کا، اوپینین، ٹھیک ہے؟ تو وہ بنتا ہے خواہش، اپنی من مرضی سے جس نے تفسیر کری، تکا لگ گیا نا اگر اس کا، ہماری زبان میں فأصاب کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اس کا تکا لگ گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی بات تو اس نے اپنی خواہش سے کری تھی لیکن صحیح جو تفسیر تھی وہ اسی کے مطابق نکل آئی، ٹھیک ہے؟ پھر بھی اس نے غلط کام کیا، پھر بھی اس نے غلط کام کیا، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے نا یہاں پر پھر بہت سارے اشکالات ذہن میں آتے ہیں کہ اپنی رائے سے غلط کام کری، غلط وہ تفسیر کری اس کی، یا اس نے کوئی کلام کیا قرآن مجید میں، تو پھر تو بھائی یہ جو اتنی ساری موٹی موٹی تفسیریں ہیں तो अब ये सारी तफसीरें जो मौजूद हैं, जो हमारे निगाहों के सामने मारिफुल कुरान की तफसीर है और इतनी सारी दूसरी तफासीर हैं फारसी में और अरबी में और उर्दू में और अंग्रेजी में, ठीक है, तो उन सब के अंदर जो है वो सिर्फ कुरान मजीद की आयात तो नहीं लिखी हुई होती, राइट, उसके अंदर जो है उन तफासीर के अंदर सिर्फ हदीस मुबारका तो नहीं लिखी हुई होती, उनके अंदर सिर्फ जो है वो सहाबा कराम के अकवाल तो नहीं लिखे हुए होते, जिसको के कहते हैं तफसीर बिल रिवाया, ठीक है ना, यानी कुरान मजीद से रिवायत ली, हदीस मुबारका से रिवायत ली, सहाबा कराम के किसी कौल से रिवायत ली, नरेशंस, राइट, या ताबीईन की से कोई रिवायत ली, तो उन तफासीर में सिर्फ रिवायतें लिखी हुई है, नहीं, उन तफासीर के अंदर तो जो मुफस्सिर साहब हैं जो कि कई सौ साल के बाद दुनिया में पैदा हुए, जैसे मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह 1300 साल के बाद पैदा हुए नबी अलैहिस्सलाम के गुजरने के, राइट, तो कितने अल्फाज तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह के अपने अल्फाज हैं उसके अंदर मारिफुल कुरान के अंदर, और हर तफसीर के अंदर ऐसे ही होता है, तो फिर ये किधर से आए, ये इनकी अपनी राय हुई ना, जिसके ऊपर जो है वो उन्होंने इतनी मोटी मोटी किताबें लिख दी, नबी अलैहिस्सलाम के अकवाल तो नहीं है सारे के सारे, उनकी रिवायतें तो नहीं है सारी की सारी, तो क्या मतलब इन्होंने गलत किया ये काम, ठीक है ना, तो ये इस हदीस का इतलाक मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी होता है, इसका मतलब है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं है इसको फिर अल्लाह हमारी तरफ से जजाय खैर अता फरमाए मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकात उनको, ठीक है, कि उन्होंने हमारे दौर के अहवाल के हिसाब से लोगों के जहनों में उठते हुए इश्काल और एतराजात को समझा, अल्लाह की तौफीक से ही समझा ऑफ कोर्स, राइट, उनको समझा, उनको एक्नॉलेज किया, राइट, हमारी अपनी तारीफ के मुताबिक अनफॉर्चुनेटली अल्फाज अच्छे नहीं है, लेकिन बात समझाने के लिए हम आजकल ये जुमला बहुत कह रहे हैं, बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, राइट, ये चीज सोची कि शैतान आज के दौर के इंसानों के दिलों में इन बातों के बारे में क्या गलत फहमियां डाल रहा है, क्या वसाविस डाल रहा है, उनके भी जवाब हमें ही देने, उलमाए कराम को देने, अगर हम जवाब नहीं देंगे तो शैतान के लिए रास्ता खुला रह जाएगा और फिर वो खुल करके लोगों को जो है वो गुमराह करेगा, और कोई उनको सेटिस्फाई करने वाला, कोई उनकी गलत फहमियों को ठीक करने वाला नहीं होगा, इस वजह से हम लिख दें इन चीजों को, बयान में बयान कर दें, लिखने की तौफीक जिसको मिलती है वो उसको लिख भी दे, ठीक है, तो मुफ्ती तफी उस्मानी साहब ने फिर इसके ऊपर तफसील के साथ बात करी है, क्योंकि इतना अहम मौजू है, इस वजह से हम उसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह, तो उनकी किताब उलूमुल कुरान के अंदर तफसीर बिल राय का पूरा एक उनवान है, उसमें फरमाते हैं कि एक हदीस में, इंशाल्लाह इसके पेजेस जो है वो एक साथी से दरख्वास्त किया है, वो फिर उसकी पीडीएफ बना करके हमें देंगे, तो आपके साथ फिर उसको शेयर भी कर लेंगे, ताकि वो पेजेस पर नेक्स्ट क्लास से यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शेयर किए जा सकें, अभी आप जरा कर सुन करके ही कोशिश करें, तो एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इरशाद पाक है, मन तकल्लम फिल कुरआना बिरायही फअसाबा फकद अख्ता, यानी इसी वाली हदीस से ही बात शुरू करी, कि जो शख्स कुरान करीम के बारे में अपनी राय से कुछ गुफ्तगू करे तो अगर सही बात भी कहे तो उसने गलती की। अल्लामा मावर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज़ गुलू पसंद लोगों ने इस हदीस से ये मतलब समझा, गुलू का मतलब क्या होता है, एक्सेस, यानी हद से आगे बढ़ जाना किसी चीज के अंदर, ठीक है, तो इवन जो है ना वो कभी किसी अच्छी चीज में भी हद से आगे बढ़ जाना जो है ये बुरा हो जाता है, तो इसको गुलू का लफ्ज इसके लिए कहा जाता है, ठीक है, खुसूसन अल्लाह वालों से मोहब्बत, राइट, उसके अंदर गुलू क्या होता है कि अल्लाह वालों को जो है वो वाला दर्जा दे देना जो कि अल्लाह ताला का मुकाम है, और अल्लाह को जो है वो भूल जाना और सिर्फ अल्लाह वालों ही की बात करते रहना, अल्लाह की बात ही खत्म कर देना, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी शुरू कर देना, अल्लाह वालों की मोहब्बतों के अंदर जैसे कि शिर्क जो है वो यहीं से शुरू हुआ, ठीक है, तो इसको गुलू कहते हैं, तो वो फरमाते हैं कि बाज़ गुलू पसंद लोगों ने इस हदीस से ये मतलब समझा कि कुरान करीम के बारे में कोई बात फिक्र और राय की बुनियाद पर कहना जायज नहीं, यहाँ तक कि इज्तिहाद के जरिए कुरान करीम से ऐसे मानी भी मुस्तंबत नहीं किए जा सकते, डिराइव नहीं किए जा सकते जो उसूल शरिया के मुताबिक हों, वो भी नहीं ड्राइव किए जा सकते। लेकिन ये ख्याल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि खुद कुरान करीम ने तदब्बुर और इस्तिंबात को जा बजा मुस्तहसन करार दिया है। ठीक है, खुद कुरान करीम ने जो है वो तदब्बुर करने को, यानी अफला या तदब्बरून अल कुरान, ठीक है, क्या है वो फादर करा, अम लहुम कुलूबी नहीं, औ अला
أم
अक्फालुहुम
على قلوب أقفالها؟
अक्फालुहा, ठीक है, औ अला कुलूबिहिम अक्फालुहा, ठीक है। ये क्यों कुरान मजीद के अंदर तदब्बुर नहीं करते, क्या इनके कुलूब के ऊपर जो है वो ताले पड़े हुए हैं? ठीक है, तो कुरान मजीद ने खुद इसको मुस्तहसन एक अच्छी चीज करार दिया है। और अगर फिक्र व तदब्बुर पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी जाए तो कुरान और सुन्नत से शरी अहकाम व कवानीन मुस्तंबत करने का दरवाजा ही सिरे से बंद हो जाएगा। ठीक है, लिहाजा इस हदीस का मतलब हर किस्म की राय पर पाबंदी लगाना नहीं है। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था तो आप के अकवाल के भी उसी तरीके से मानी होते हैं, मफहूम होते हैं, जिस तरीके से किसी भी इंसान के कौल का जो है ना वो एक पस मंजर होता है, उसके साथ ही उसके कौल को समझा जा सकता है। नबी अलैहिस्सलाम के अकवाल यानी अहादीस मुबारका भी पस मंजर के साथ ही समझे जाते हैं, तफसील के साथ ही समझे जाते हैं। चुनाचे इस बात पर जमहूर उलमा मुत्तफिक हैं कि खुद कुरान और सुन्नत के दूसरे दलाइल की रोशनी में इस हदीस का मंशा ये हरगिज नहीं है कि कुरान करीम के मुआमले में गौर फिक्र और अक्ल व राय को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये नहीं है इसका मतलब, बल्कि इसका असल मंशा ये है कि कुरान करीम की तफसीर के लिए जो उसूल इजमाई तौर पर मुसल्लम और तयशुदा हैं। इजमाई तौर पर क्या मतलब, कि उलमाए उम्मत का उनके ऊपर इजमा है, कंसेंसस है, मुत्तफिक हैं उलमाए उम्मत, जिनमें सबसे पहले उलमा कौन है, सहाबाए कराम। ठीक है, तो वो जिस बात पर मुत्तफिक हैं उनके नजदीक जो मुसल्लम और तयशुदा उसूल हैं तफसीर कुरान के, उनको नजरअंदाज करके जो तफसीर महज राय की बुनियाद पर की जाए वो नाजायज होगी, यानी पर्सनल राय की बुनियाद पर वो फिर राय जो है ना फिर वो ख्वाहिश बन जाएगी। ठीक है, तो वो नाजायज होगी। और अगर इस तरह तफसीर के मामले में दखल देकर कोई शख्स इत्तेफाकन किसी सही नतीजे पर भी पहुंच जाए तो वो खताकार है, जिसको कि हमारी स्लैंग में तो कम लग जाना कहते हैं, तो वो खताकार है क्योंकि उसने रास्ता गलत इख्तियार किया है। देखें, इंतहाई अहम तरीन उसूल यहां पे बयान फरमा दिया, सिर्फ कुरान की तफसीर के बारे में नहीं, जिंदगी के बारे में। क्या है वो उसूल, दिल तो चाह रहा है आप लोगों से पूछें, क्या फरमाते हैं, और आप सोचें कि क्या उसूल बयान किया है, जिंदगी का उसूल बयान किया, कामयाबी का उसूल बयान किया, कि कोई शख्स इत्तेफाकन किसी सही नतीजे पर भी पहुंच जाए तो वो खताकार है क्योंकि उसने रास्ता गलत इख्तियार किया। अब उसूल तफसीर को नजरअंदाज करने की बहुत सी सूरतें हो सकती हैं जो कि हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, माशाल्लाह, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, इट्स द प्रोसेस दैट मैटर्स नॉट द रिजल्ट्स। हमारे दीन के अंदर रिजल्ट्स मैटर नहीं करते, जो तरीका है, जो रास्ता है, जो प्रोसेस है, वो मैटर करता है। रिजल्ट्स तो हमारे हाथ में भी नहीं होते, वो कैसे मैटर कर सकते हैं हमारे लिए, वो तो अल्लाह के हाथ में होते हैं। हमारे हाथ में क्या है, आप कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, राइट, तो उसकी बुनियाद पर हमारे सवाब और अजाब का फैसला होता है, उसके बुनियाद पर हमारी जन्नत और जहन्नुम का फैसला होता है, खत्म बात। ठीक है, तो यहाँ पर तो वही बात हो गई ना कि भाई रिजल्ट अच्छा निकल भी आया, रास्ता आपने गलत इस्तेमाल किया तो आप नाकाम रहे। अच्छा, तो अब सूरह तफसीर की फिर नज़रअंदाज करने की बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं, तो फरमाते हैं नंबर 1 कि जो शख्स तफसीर कुरान के बारे में गुफ्तगू करने की अहलियत नहीं रखता, वो महज अपनी राय की बलबूते पर तफसीर करना शुरू कर दे, अहलियत क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो अब इसके ऊपर मजीद तफसील बाकायदा एक अलग उनवान के तहत हजरत ने लिखी है, उसको वहीं पे पढ़ेंगे कि अहलियत का मतलब क्या होता है, क्वालिफिकेशन का तफसीर की। दूसरा, किसी आयत की कोई तफसीर सराहतन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा व ताबईन से साबित हो और वो उसे नजरअंदाज करके महज अपनी अकल से कोई मानी बयान करने लगे। भाई जब सहाबा वगैरह की तरफ से एक चीज मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई चीज मौजूद है, आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं और अपनी अकल को उनसे उनसे ज्यादा अच्छा समझना शुरू हो गया। इसका मतलब है द सेम थिंग वॉज मैंशन इन द लास्ट रोल मॉडल क्लास। जी हजरत बिनोरी रहमतुल्लाह का गालिबन जो कौन नकल किया था ना। जी मैंने जी नंबर थ्री, जिन आयात में सहाबा व ताबईन से कोई सरीह तफसीर मनकूल नहीं है, तो उनमें लुगत और जुबान अदब के उसूलों को पामाल करके कोई तशरीह बयान करें। ठीक है, लुगत और जुबान अदब के उसूल। भाई जब आपके पास कोई रिवायत मौजूद नहीं है तो फिर आपको लुगत से तफसीर करनी होती है ना। अब लुगत को भी आपने इग्नोर कर दिया, उसके उसूलों को, जैसे कि वो सर सैयद अहमद खान की मिसाल गालिबन पिछली वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ी थी। ठीक है, कि वो इज़ आसाक अल हजब, तो उन्होंने कहा जी वो पत्थर पे अपने असा को मारना है मुराद नहीं है, बल्कि पत्थर के ऊपर असा से टेक लगा के चलना मुराद है। तो वो जो है वो लुगत के उसूलों के खिलाफ थी वाली बात। ठीक है, तो ये भी तफसीर है, तफसीर बिल ख्वाहिश होगी। ठीक है, अच्छा चौथी सूरत क्या हो सकती है इसकी, कि कुरान और सुन्नत से बराह रास्त अहकाम व कवानीन मुस्तम्बत करने के लिए इज्तिहाद की अहलियत ना रखता हो और फिर इज्तिहाद शुरू कर दे। ठीक है ना, इज्तिहाद की क्वालिफिकेशन अलग चीज होती है, तफसीर की क्वालिफिकेशन अलग चीज होती है। ठीक है ना, एक शख्स जो है वो मुफस्सिर और मुज्तहिद दोनों हो सकता है। ठीक है, और खाली मुफस्सिर भी हो सकता है और खाली मुज्तहिद भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो भाई क्वालिफिकेशन जिस चीज की है आपके पास, उसकी आप उसको आप एंटाइटल होते हैं वो काम करने की। और पांचवी सूरत गलत तफसीर करने की या उसूल तफसीर को नजरअंदाज करने की, वो यह है कि कुरान करीम की मुतशाबह आयात कि जिनके बारे में कुरान मजीद ने खुद कह दिया है कि उनकी 100% सही मुराद सिवाय अल्लाह की कोई नहीं जानता। ठीक है, जैसे अलिफ लाम मीम काफ हा या आयन सीन वगैरह। ठीक है, और उसके अलावा भी आयात हैं, अल्लाह नूर समावाती वल अर्द कमसल मिश्कातन, वो जो सूरह नूर के अंदर जो आयात हैं, तो ये मुतशाबहात हैं, इनके एग्जैक्ट मानी नहीं पता। तो कोई उनकी जज्म वसूख के साथ कोई तफसीर बयान करे और उस पर मुसर हो जाए। ठीक है ना, तफसीर तो उलमा ने भी बयान करी है, अहले हक ने भी इसकी, कि भाई इसका ये मतलब हो सकता है, अलिफ लाम मीम का ये मतलब हो सकता है, अल्लाह लाम से जो है वो जिब्राइल का नाम है, मीम से मुराद जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो अलिफ लाम मीम की भी एक मुमकिना तफसीर ये है। ठीक है, अल्लाह जिब्रील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, और उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ों के मुतशाबे आयात की जो है वो तफसीर बयान की है। लेकिन गलत क्या है कि जज्म वसूख के साथ, यानी बिल्कुल 100% सर्टिनिटी के साथ कहे कि हाँ इसकी यही तफसीर है, और फिर उसके ऊपर मुसर हो जाए कि नहीं मैं तो नहीं टलूंगा अपनी इस ओपिनियन से, तो ये भी गलत सूरत है। ठीक है, और छठी सूरत कि कुरान करीम की ऐसी तफसीर बयान करे जिससे इस्लाम के दूसरे इजमाई तौर पर मुसल्लम और तयशुदा अकायद या अहकाम मजरूह होते हैं। ठीक है, वही जो उम्मत का जिनके ऊपर इजमा हो गया कि ये शरीयत के अहकामात हैं, ये फराइज हैं, ये हराम है, ठीक है, ये वाजिब है, ये मकरूह तहरीमी है, और तवातुर के साथ इसके ऊपर जो है वो चीज मौजूद है, अब ये जो है ना वो ऐसी तफसीर बयान करे जिसमें उसका इनकार करना शुरू कर दे। ठीक है, और सातवीं शक्ल के तफसीर के मामले में जहां अक्ल व फिक्र का इस्तेमाल जायज है, वहां किसी कतई दलील के बगैर अपनी जाती राय को यकीनी तौर पर दुरुस्त कहे, यकीनी तौर पर दुरुस्त कहे और दूसरे मुज्तहिदीन की आरा को, यानी उनके ओपिनियंस को यकीनी तौर से बातिल करार दे। ठीक है, जहां पर अक्ल व फिक्र का इस्तेमाल जायज है, तो भाई मुज्तहिदीन में फिर इल्मी इख्तलाफ होता है, जैसे सहाबा कराम के दरमियान इल्मी इख्तलाफ हुआ था, बाद के मुज्तहिदीन में भी इल्मी इख्तलाफ हुआ। अब ये कहे नहीं मेरा इज्तिहाद इज 100% राइट और दूसरे का इज्तिहाद इज 100% रॉन्ग। ठीक है, तो ये भी उसूल तफसीर के खिलाफ जाने की एक सूरत बनेगी। ये तमाम सूरतें इस तफसीर बिन राय की हैं जिनसे मजकूरा बाला हदीस में मना किया गया है। चुनाचे एक दूसरी हदीस में इन तमाम सूरतों को इस मुख्तसर जुमले में समेट दिया गया है। मन काला फिल कुरान बगैर इल्म फल यतबव्वा मक़अदहू मिन النار, कि जो शख्स कुरान करीम के मामले में इल्म के बगैर कोई बात कहे तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हदीसें जो कि मारुफुल कुरान के मुकदमे के अंदर हजरत ने नकल की थी और उनकी कोई तफसील वहां पे मौजूद नहीं थी, तो उनकी सारी की सारी तफसील जो है वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे पहुंचा दिया कुदरतन। यानी पता नहीं था ऐसा जिसको कोई इतनी मोटी किताब उसमें कहाँ कहाँ तलाश करता पड़ता। तो बिल्कुल बस आप लिटरली यकीन करें इस आजिज ने बुक को खोला है और यहीं पर आकर के वो खोली, एक पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और ये पिछले हफ्ते किया था क्योंकि पिछले हफ्ते जो है वो हमारे पास टाइम नहीं था, हमारे एक दोस्त आप में से एक मिलने आए हुए थे, जब तक वो गए तो काफी देर हो चुकी थी, फिर और काम वाम करने थे, तो हमने कहा भाई अब क्या करें। तो मैं किताब को उठाया, यूं खोला और यही वाला सब पाया। ठीक है ना, तो आप लोगों की बरकत है माशाल्लाह, अल्लाह ताला चाहता था कि आप तक ये बातें पहुंच जाएं, तो बस उलूमुल कुरान की किताब, वरना हम कहाँ से तलाश तलाश करते। बहरहाल अल्लाह अलबत्ता फरमाते हैं कि अलबत्ता तफसीर के उसूलों और इस्लाम के इजमाई तौर पर तयशुदा जवाबित की पाबंदी करते हुए अगर तफसीर में किसी ऐसी राय का इजहार किया जाए जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो तो वो इस हदीस की वईद में दाखिल नहीं है। ठीक है, यानी जवाबित की पाबंदी करते हुए अगर मुफस्सिर अपनी राय बयान करता है तो फिर वो इस हदीस की वईद में दाखिल नहीं है कि उसको जहन्नम में अपना ठिकाना बनाना पड़ेगा। अलबत्ता इस किस्म का इजहार राय भी कुरान और सुन्नत के वसी व अमीक इल्म और इस्लामी उलूम में महारत के बगैर मुमकिन नहीं है, और उलमा ने उसके लिए भी कुछ कार आमद उसूल मुकर्रर फरमाए हैं जो उसूल फिका और उसूल तफसीर में तफसील से बयान हुए हैं, और उनका एक नहायत मुफीद खुलासा अल्लामा बदरुद्दीन ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल बुरहान फी उलूम अल कुरान की 41 में बिलखुसूस में बयान फरमाया है। ये पूरी बहस नहायत काबिल दर है, लेकिन चूंकि अरबी जुबान और उलूम की महारत के बाद बेफायदा है, जो हमारे लिए इतना ही तफसील काफी इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि जो गलत फहमी अब तक थी अक्सर तो क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, या ये कि इश्काल था जहन में, एक एक क्वेश्चन था कि वाकई जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी बात फरमाई कि जिसने भी अपनी राय से बात करी तो उसने गलत किया, तो फिर ये सारी तफसीरें कहाँ से आ गई, मेरे भी ध्यान में ये सवाल था। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सही जरूर ने अकाबरीन की बात सुनने और पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, तो ये इश्कार जो है वो दूर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना, वो वक्त कितना रह गया है, 3 मिनट रह गया, तो अब हमने इसी में से मजीद भी पढ़ना है क्योंकि फिर मुफ्ती तफी उस्मानी साहब ने ना फिर अब स्पेसिफिकली एक एक एतराज को दिया है और उनका भी बड़ा अच्छे से जवाब दिया है। तो जो अगला मौजू इसके अंदर है, उनवान है, वो है तफसीर में गुमराही के असबाब। ठीक है, क्या क्या कॉजेज बनते हैं तफसीर में गुमराही, क्या क्या सोचें, क्या क्या फिक्रें, क्या क्या यानी एक्सटर्नल, क्या क्या इंटरनल फैक्टर्स रीजन बनते हैं गुमराही के, क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स रीजन बनते हैं गुमराही के। ठीक है, तो इल्मे तफसीर जहां एक इंतहाई शर्फ व सआदत की चीज है, वहां इस नाजुक वादी में कदम रखना बेहद खतरनाक भी है, क्योंकि अगर इंसान किसी आयत की गलत तशरीह कर बैठे तो उसका मतलब यह है कि वो अल्लाह ताला की तरफ एक ऐसी बात मंसूब कर रहा है जो अल्लाह ताला ने नहीं कही, और जाहिर है कि इससे बड़ी गुमराही क्या हो सकती है। ठीक है, जिस तरीके से झूठा ख्वाब बयान करना ये अल्लाह के ऊपर झूठी तुहमत बांधना है, तुहमत लगाना, क्योंकि ख्वाब अल्लाह की तरफ से इंसान को मिलते हैं, आते हैं, अभी ये कहते हैं मैंने ख्वाब देखा जो किसने नहीं देखा था, तो ये अल्लाह पर तुहमत है, और झूठ की जो है ना वो बदतरीन शक्लों में से एक शक्ल ये है, शायद सबसे बड़ी शक्ल जो झूठ की सबसे बुरी शक्ल जो है वो कुरान के बारे में झूठ बोलना है, दीन के बारे में, और फिर उसके बाद जो है वो ख्वाब के बारे में झूठ बोलना। ठीक है, कभी ना बच्चे आपस में मजाक शुरू कर देते हैं ख्वाब बयान करने का, तो अपने बच्चों को भी जो है ना वो शुरू से बात समझानी चाहिए कि ये बेटा ये वाला मजाक आप नहीं करें। ठीक है ना, झूठ तो वैसे भी मजाक में भी नहीं बोल सकते, लेकिन खुसूसन ख्वाब वाले में ना, किसी ने ख्वाब बयान किया तो बच्चा चाहता है यार मैं भी तो कुछ कहूँ, मैं खामोश बैठा रहूंगा, बेवकूफ बनता रहूंगा, तो मैं भी चलो अपनी तरफ से ख्वाब बना रहा हूँ, किसको पता देखा था कि नहीं देखा था। नहीं, शुरू से ऐसी जहन साजी करनी चाहिए कि ख्वाब के बारे में बहुत मुहतात रहें। उसी तरह से बड़े लोगों के लिए तफसीर के बारे में बहुत मुहतात रहना, क्योंकि अल्लाह पर झूठ बांधना बनेगा। ये जिन लोगों ने जरूरी शराइत पूरी किए बगैर कुरान करीम की तफसीर में दखल अंदाजी की है, वो काफी मेहनत खर्च करने के बावजूद इस बदतरीन गुमराही में मुब्तला हो गए हैं। इसलिए यहाँ एक नज़र उन असबाब पर भी डाल लेनी जरूरी है जो इंसान को तफसीर कुरान के मामले में गुमराही की तरफ ले जाते हैं। पहला सबब, नाअहलियत, ठीक है, लैक ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो कि हमने पीछे जो सूरतें थी उनके अंदर पढ़ा था। तो अब ये नाअहलियत के ऊपर तफसील इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास का वक्त मुकम्मल हो गया है। किसी को कुछ कहना हो, पूछना हो, बताना हो, तो चैट विंडो के ऊपर लिख करके कर सकते हैं काम। प्रोसेस सिमिलरली ऑन हदीस, हाँ हदीस के साथ भी वही वही है कि जिसने मेरी तरफ कोई ऐसी चीज मंसूब करी जो कि मैंने नहीं कही थी, तो फलियतबव्वा मकदहू फिन्नार, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में देखे, जहन्नम में बनाए। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर झूठ बांधना, लेकिन अल्लाह पर झूठ बांधना ये सबसे बड़ी चीज है ना। फिर नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधना, फिर ये ख्वाब अगर बुरा, वो भी अल्लाह की तरफ से आता है या शैतान की तरफ से? भाई ख्वाब तो ख्वाब होता है ना, शैतान की तरफ से भी आए लेकिन पीछे तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है ना। ठीक है ना, शैतान अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो पीछे से अल्लाह ताला की तरफ से शैतान को इजाजत मिलती है, शैतान के भी दिल के अंदर आइडिया आता है, फिर शैतान जो है वो आपके दिल में आइडिया डालता है। तो यहाँ पे शैतान और रहमान वगैरह का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि जी शैतान की तरफ से ख्वाब के बारे में आप झूठ बोल सकते हैं, और अगर वो आपके ख्याल में रहमान की तरफ से ख्वाब है तो आप उसके बारे में झूठ नहीं बोल सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ख्वाब की बात हो रही है, एब्सोल्यूट ख्वाब के बारे में, उसके बारे में आप झूठ नहीं बोल सकते। खैर, बोल तो किसी भी चीज के बारे में नहीं सकते हैं झूठ, किसी झूठ बोलने की तो इजाजत नहीं है किसी भी चीज के बारे में, लेकिन यह है कि कितनी बड़ी सजा होगी, सबसे बड़ी सजा होगी या उससे कम वाली सजा होगी या उससे कम वाली सजा होगी, खाली इतनी बात हो रही है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर क्लास कम करते हैं। वा आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।